So in this chapter is described with these instructions which Lord Yashavdev is giving to his son, contain the teachings of Bhagavad
Dhamma.
They are religious principles in devotional service that transcend religious principles for liberation and the mitigation of material misery.
ये धर्म के नियम हैं जो भक्ति पर आधारित हैं, जो भौतिक नियमों के परे होकर जीव को मुक्ति दिलाने में समर्थ बनाते हैं।
Prabhupada explains that in the introduction to this chapter.
प्रभुपाद जी ये बात इस अध्याय की शुरुआत में समझाते हैं।
In this verse, Lord Yashavdev is describing the basic principle of material existence.
इस श्लोक में कृष्णदेव राजा भौतिक अस्तित्व के जो मूल नियम है उसके बारे में बता रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद विद मेनी टाइम्स कोट दिस वर्स।
श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार इस श्लोक को उद्धृत किया है।
इट इज अ वेरी पॉपुलर वर्स बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल एसेंस ऑफ आवर अटैचमेंट्स टू द मटेरियल वर्ल्ड।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि ये हमारे भौतिक जीवन में जो प्रमुख आसक्तियां हैं उसके बारे में वर्णन करता है।
Attachments which we experience are not so easy to give up.
वो आसक्तियां जिन्हें छोड़ देना या उससे व्यर्थ होना बहुत मुश्किल बात है।
Nonetheless, we have to at least understand what is the cause or the root cause of these attachments to the material world.
फिर भी हमें समझना जरूरी है कि उनके इन आसक्तियों के कारण क्या है।
Lord Yashavdev is giving these instructions to his sons because he's preparing them to become kings actually in the future.
क्योंकि ऋषभदेव राजा के जो पुत्र हैं वो आगे जाकर राजा बनने वाले हैं स्वयं, इसलिए राजा ऋषभदेव उनको ये शिक्षा दे रहे हैं।
And even kings, they also should be understand the principles of renunciation.
और राजाओं को भी, राजा होते हुए भी इस विरक्ति का जो तत्व है वैराग्य का वो समझना बहुत आवश्यक है।
So the basic principle is this attraction between the male. The basic principle of material existence is this attraction between the male and the female.
और ये भौतिक जीवन का हमारा जो मूल कारण है, अस्तित्व का कारण है, ये पुरुष और स्त्री का स्त्री के बीच में जो आकर्षण है वो है।
And then, as the verse explains, that on the basis of this misconception, the hearts become tied together.
और इसी आसक्ति के कारण दोनों व्यक्तियों के हृदय जो है,
and then the illusions of life will simply increase.
और जीवन की जो भ्रमित अवस्था है वो बढ़ जाती है।
What is the illusion of life?
ये जीवन का भ्रम क्या है?
Janasya mohoya mahamamaiti. This is I am this and this is mine.
ये जीवन का तत्व जो है वो ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है।
And therefore, any association between men and women, the tendency is there to expand this conception of oneself.
और कोई भी पुरुष स्त्री के बीच में जो मूल आकर्षण होता है उसकी प्रवृत्ति होती है कि इस आकर्षण को अलग अलग स्तरों पर बढ़ाया जाए।
Therefore, the tendency is to expand and to increase one's attachments to this world.
और प्रवृत्ति ये होती है कि इस दुनिया के जो विषय भोग की वस्तुएं हैं उनसे अपना आसक्ति और आकर्षण बढ़ाया जाए।
Although the idea may be simply to create a comfortable situation in this world, provide for the maintenance of one's family,
हो सकता है कि इसके पीछे कल्पना यह हो कि हमारे इस जीवन में इस विश्व में रहते हुए हमारी स्थिति बहुत आरामदायक हो.
But then there are so many anxieties that come with it.
ये प्रक्रिया को इस कार्य को करते हुए बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं.
Anxieties which we never expected to come.
चिंताएं जिसे हमने कभी उम्मीद नहीं की उन चिंताओं में.
Even more anxieties than we could have ever possibly have expected.
ऐसी चिंताएं आती हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जितने प्रमाण में आ सकती
है. Actually, when Hiranyakashipu asked his son Prahlad, "Tell me, what is it that you've learned at school?"
हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को पूछा कि अपने गुरुकुल में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की.
He was thinking that Prahlad was going to tell him about all the wonderful things about diplomacy.
तो उनको प्रहलाद से ये उम्मीद थी कि वो राजनीति के बारे में और भौतिक जीवन के बारे में पूर्ण जो सीख चुके हैं उसके बारे में बताएंगे.
Nature of friends and enemies.
मित्र और शत्रु के बारे में ज्ञान सीखा होगा.
All these wonderful things that Sandana Marku was supposed to be teaching him.
और ये जो उनकी दृष्टि से जो अद्भुत और अच्छी चीजें थी जो शंड और अमर ये जो राजगुरु थे उनके.
Hiranyakashipu was also thinking that Prahlad was being prepared for kingship.
और हिरण्यकशिपु को ये भी भावना हो रही थी कि प्रहलाद को आगे जाकर राजा बनाने के लिए ये शिक्षा दी जा रही है.
But he was preparing him with a different set of instructions.
लेकिन वो उनको अलग प्रकार की शिक्षाओं से पढ़ा रहे हैं.
Or at least he thought that he was being prepared with a different set of instructions.
हिरण्यकशिपु को लग रहा था कि अलग प्रकार से उसको उसकी इच्छा के अनुसार शिक्षा देते होंगे.
But when he asked Prahlad, "Please tell me something that you've been learning."
लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद को पूछा कि तुमने क्या सीखा अगर मुझे बताओ.
Prahlad told me this as I have oh king he first he addressed him as oh king of the demons best of your service.
अपने उत्तर को शुरू करते हुए सबसे पहले प्रहलाद ने बताया कि असुर वर्ग के असुरों के राजा.
As far as I have learned from my spiritual master.
जहां तक मैंने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है.
That any person who has accepted a temporary material body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety.
ये क्या ये है जो मैंने सीखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति ने इस शरीर को धारण किया है वो कभी कभी भी उसे एक दुख का सामना करना पड़ सकता है.
Because of having fallen in a dark well.
क्योंकि हम एक अंधे कुएं की ओर बढ़ रहे हैं.
Where there is no water and there is only suffering.
और उस अंधे कुएं में जल नहीं है केवल दुख ही दुख भरा हुआ है.
Therefore, Prahlad recommended to his father better that you give this up and go to the forest.
So Prahlad ji said that it is better that you leave this and go to the
forest. As Prabhupada explains in the text itself, that better that you understand that you should go to Vrindavan, you should hear the topics of the Supreme Personality of Godhead.
उस श्लोक का आगे का जो भाग है उस कास्ते हैं कि वो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अच्छा ये होगा कि आप वृंदावन चले जाएंगे और वहां पर साधुओं से उपदेश सीखेंगे.
So of course, Hiranyakashipu was a little bit shocked to hear this from
him. और ये सब सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत स्तब्धित हो गए, बहुत आश्चर्य हो.
Nonetheless, Prahlad Maharaj was telling him that this is what I've learned from my spiritual master.
क्योंकि प्रहलाद जी उनको बता रहे हैं कि मेरे गुरु से मैंने यही सीखा है.
Anybody who's accepted a material body and temporary household life, he has to be embarrassed by all these anxieties.
जो भी व्यक्ति ने शरीर धारण किया है और व्यस्त जीवन को स्वीकार किया है उसे ये दुखों का सामना करना ही पड़ेगा.
And Vishwanath Chakravarti Thakur actually gives a very nice analogy in relationship to this verse.
और इस श्लोक के उपलक्ष्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपना विवरण देते हैं.
Which very nicely graphically depicts the type of anxiety and pleasures that one finds in this dark world.
इस अपने चर्चिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर तरीके से इन ग्रस्त जीवन के बारे में क्या क्या चिंताएं और क्या क्या सुख दुख अनुभव होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं.
Of course, it doesn't have to be a dark well.
अर्थात ये गंधा कुआं होने की आवश्यकता नहीं है.
But otherwise known as griha andhakupa.
लेकिन उसको हम गृह अंधकूप के रूप में जानते हैं, अंधे कुएं के रूप में जानते हैं.
But as Prabhupada is quoted here in his purport from Satya Samhita.
लेकिन प्रभुपाद सत्य संहिता से यहां पर श्लोक बता रहे हैं.
It's generally it is found that most people are bound by these knots of marital relationship and therefore they forget their relationship with Krishna.
क्योंकि बहुत सारे जीवन में इस विश्व में बहुत सारे लोग अधिकतर लोग इस गृहस्थ जीवन में आसक्ति में फंसे हुए हैं, इसलिए वो कृष्ण के साथ में जो हमारा संबंध है उसको भूल जाते हैं।
So in describing this well, Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example of the king who goes to the forest.
So Vishwanath Chakravarti Thakur Maharaj ek raja ka udaharan dete hain jo jangal mein chale jate hain
to hunt.
Shikar karne ke liye jangal jate hain.
And while in the forest, he sees that there is a very ferocious tiger that he cannot possibly defeat.
Aur wo van mein ek aise sher ko dekhte hain jisko usko lagta hai ki isse maarna mujhe asambhav hoga.
So he decides that temporarily he would take shelter of a well. So he grabs onto two branches and he lowers himself in the well to avoid this ferocious tiger who will surely devour him and kill him. And while lowering himself into the well, he sees that below him there is no water in the well.
जब वो कुएं की ओर झुकते हैं तो देखते हैं कि उस कुएं के अंदर कोई पानी नहीं है।
It is completely dried up.
पूर्णतः से सूख गया है।
And on the bottom of the well are poisonous snakes.
और उस कुएं के तल में देखते हैं कि बहुत विषैले सांप बैठे हुए हैं।
He has come to this well thinking that he will get relief, some relief from the fearsome tiger which is about to devour him.
उसे लगता है कि वो जो शेर भूखा शेर बाहर खड़ा है उससे बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है, सोचकर वो उस कुएं में छुप गए।
But instead he finds himself faced with many poisonous snakes who are lunging forward trying to bite him.
और देखते हैं कि वो बहुत भूखा जो सांप है वो नीचे से उसको काटने के लिए तड़प रहे हैं।
Vishwanath Chakravarti Thakur says that the tiger is compared to death.
विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज बताते हैं कि जो शेर जो है वो मृत्यु का प्रतीक है।
And the poisonous snakes compared to all the different troubles and anxieties that one finds in household or life.
और विषैले सांप जो है वो इसका प्रतीक है कि गृहस्थ जीवन में जितने भी दुख और चिंताओं का सामना करते हैं उन चिंताओं के प्रतीक।
One enters the well to create a situation to avoid death.
कुएं में प्रवेश करता है व्यक्ति मृत्यु के भय को टालने के लिए प्रवेश करता है।
Creating his attachments and his creating an attachment and a sense of security in the material, false sense of attachment and false sense of security in the material world.
और झूठे तौर पर वो अपनी आसक्तियां और अपने जो विषयों के आनंद हैं उसको बनाते हैं इसकी वजह से।
But instead he finds all of these anxieties and problems in the form of these poisonous snakes.
लेकिन सुख पाने के बजाय वो इस विषय के सांपों के रूप में बहुत ही चिंता और बहुत दुख का अनुभव करते हैं।
But that is not all.
लेकिन यही काफी नहीं है, इतना ही कम है।
He has lowered himself into this well by holding on to two branches.
यही काफी नहीं है, लेकिन वो दो शाखाओं को पकड़कर इस कुएं में झुके हुए हैं।
And these two branches appear to be of pious and impious activities.
ये शाखाएं क्या हैं? अच्छे और बुरे कर्म की दो शाखाओं को पकड़कर वो इस कुएं में झुक रहे हैं।
And while he's holding on to these two branches, there are two mice on the top of the well who are chewing on them.
और जो जब वो दो छाखाओं को पकड़ कर झुक रहे हैं तो दो ऐसे कीटक हैं जो उसको चूस रहे हैं साथ साथ।
A black mouse and a white mouse.
चूहे ना माइस ना। हाँ ओके, दोनों कीटक हैं, चूहों की बात कर रहे हैं। दो चूहे हैं, एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है, जो दोनों दो हाथ से पकड़े हुए हैं, दो हाथों को चूस रहे हैं।
And the black mouse and the white mouse, they represent day and night.
और जो काला चूहा है वो रात का प्रतीक है और जो गोरा चूहा है वो दिन का प्रतीक।
The form of time is passing and they're chewing away at these two branches, which is his only way of avoiding falling in the well.
और दिन और रात के रूप में काल जो है वो इन दो शाखाओं का, यानी पुण्य और पाप की शाखाएं, उससे चूस रहा है, उसको चूस के खत्म कर रहा है।
And he's holding on to his pious and impious activities.
फिर भी वो अपने पुण्य और पाप कर्मों को पकड़ के खड़ा है जी।
He performs some pious activities in this life, trying to counteract the effects of impious activities.
अपने पापों के प्रभाव को कम करने के लिए वो पुण्य करने का प्रयास करता है और दोनों से पकड़ के रखता है, पाप हो गया और पुण्य को।
Just like Prahlad Maharaj also explains that in this material world, every materialist is just trying to avoid happiness and to mitigate distress.
हर एक व्यक्ति जो है वो प्रयास कर रहा है इस जीवन में कि
avoid suffering and mitigate this. Excuse me, every materialist is endeavoring for happiness and trying to mitigate his
distress.
And therefore he is acting accordingly. Actually, however, as long as one is endeavoring for happiness, he is creating his conditions for distress.
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जब भी वो सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है तो दुख भरी स्थितियों को निर्माण करता है.
सो इन द मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज एंगेज्ड इन सम अटेम्प्ट टू मिटिगेट देयर डिस्ट्रेस बाय पायस एक्टिविटीज.
भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने दुखों के दुख भरी घटनाओं को टालने के लिए पुण्य करने का प्रयास करते रहते हैं.
एंड देयर आर आल्सो सफरिंग रिजल्ट्स ऑफ देयर इंपायस एक्टिविटीज.
साथ साथ अपने दुख भरे कर्मों के फल को भी अनुभव करते हैं.
They try to counteract their suffering by pious activities.
अपने पाप के फलों को त्याग करने के लिए मुक्त होने के लिए वो कुछ पुण्य करने का प्रयास भी करते हैं.
So the king is holding on to these two branches, which are his pious and impious activities that are going on every day of his life.
तो राजा दो शाखाओं को पकड़कर ही प्रयास कर रहा है, मतलब पुण्य और पाप को पकड़ के ही अपने जीवन को निभाने का प्रयास कर रहा है.
And he's holding on very dearly to these branches.
और ये चार शाखाओं को बहुत ही तीव्रता से पकड़कर वो राजा बैठा है.
But these two mice are making it very difficult for him to achieve any permanent shelter in this well.
लेकिन जो दो चूहे हैं वो ये कार्य करने में सफलता नहीं दे रहे हैं.
Because the tiger is waiting for him outside.
और बाहर उसके लिए जो मृत्यु का शेर है वो इंतजार कर रहा है.
And the poisonous snakes are waiting for him below.
और जो विषैले नाग है उनसे से इंतजार कर रहे हैं कि उनको खाया जाए.
This is not the end of the analogy.
और यहां पर भी
there is a little bit more.
और थोड़ा इसमें मसाला है.
So while he's holding on to these branches and he's trembling.
और जब वो इन पाप रूपी शाखाओं को पकड़कर बैठे हैं और उसको कांप रहे हैं.
Why is he trembling?
क्यों वो कांप रहे हैं?
Because day and night are passing.
क्योंकि दिन और रात आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है.
And he sees that one thing, something has to happen soon.
और देख रहे हैं समय के आगे जाने से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है.
He is always fearful of death.
और मृत्यु का भय तो उसके हृदय में बसा हुआ है.
These two mice are chewing these branches.
और दो चूहे निश्चित रूप से उन शाखाओं को काट रहे हैं.
So while he's traveling, he sees there is some honeycomb in the branches.
जब वो कांप रहे हैं ऐसे पकड़कर दो शाखाओं को देखते हैं कि झाड़ पर एक मधुमक्खी का चारा है.
And some of the honey from the honeycomb is coming down the branch.
थोड़ा सा मधु जो है उस मधुमक्खी के जाल से टपक रहा है एक फूल के ऊपर.
And he opens his mouth and he tastes his honey.
और वो बोलता है और वो एक एक बूंद टपका हुआ जो मधु है उसको चखने का प्रयास करता है.
And he thinks, oh, this is very nice.
और वो सोचता है कि वाह इतना अच्छा स्वाद है.
Vishwanath Chakravarti Thakur says, this is the pleasure in household of life. Some honey falls into the mouth. One gets some temporary taste in the midst of all of these distresses, and one thinks, this is nice.
तो इतने बड़े सब तरह सब दिशाओं से जो दुख भरा स्थिति संकट ग्रस्त भय स्थिति आ रही है उसके बीच में एक बूंद मधुरता उसके बाद में स्वाद करने को मिलता है तो उसको लगता है वाह इतना आनंद है.
So Prahlad Maharaj tells his father, he says, as far as I understand that anyone who's accepted the material body and accepted temporary household life is certainly embarrassed by this anxiety.
प्रहलाद महाराज के पिता अरण्यश्रु बता रहे हैं कि जितने भी शरीर धारण किया है और इस भौतिक जीवन को गृहस्थी जीवन को अपनाया हुआ है उसके जीवन में दुख आना तो निश्चित है.
Because they've fallen into this dark well.
क्योंकि वो उस अंधेरे भरे कुएं में कूद रहे हैं.
Where there is no water but only suffering.
यहाँ पर कोई पानी नहीं है लेकिन केवल दुखी हो.
So that is what the well is like.
तो ये इस प्रकार से इस कुएं को हम समझ सकते हैं.
Some chapala sukha, some flickering pleasure.
कुछ क्षणिक आनंद है यहाँ पर.
Just as Govinda Das describes in the song Bhajamuremana.
Kavi Govinda Das apne Bhajamuremana ki is bhajan mein
describes chapala sukha lava lagire, all for some temporary flickering pleasure in this world.
Bata rahe hain ki kis tarah se is vishwa mein ye kshanik sukh
Sita Atapa Bhattava Rishana Edina Jagini Jamaya Vipali Sevana Pripana Durajana Chapala Sutta Baba Bhagide. He describes that simply for some flickering pleasure, I have accepted the service of so many wicked and miserly men.
गोविंददास कवि अपने कविता में बताते हैं कि केवल कुछ क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए मैंने दुष्ट जनों की भी सेवा की।
यही गाना जोगना पुत्र परिचना इति की अच्छी परिस्थिति रे कमल दल जल जीवन जल मल भजन हरि परिणीति रे इट सेज वेल्थ सन्स वाइफ यूथ फैमिली व्हाट इज देयर इन इट।
और कहते हैं कि वो जो परिवार है, पुत्र है, अपने बच्चे हैं, उसका पैसा है, उसका आनंद है, क्या क्या रखा है।
Just as a drop of water appears on a lotus leaf, such is this life.
ये सब कैसे सुख हैं? एक कमल दल के ऊपर गिरा हुआ जो दाव का बिंदु है पानी का, उसका क्या स्थिति है? वही स्थिति इन सुखों की है जीवन जाते हैं।
So why should we take up the worship of Sri Hari, which is the only necessity?
इसलिए हमें हमेशा श्री हरि के पूजा के विधि को स्वीकार करना चाहिए, तो केवल एक ही विधि है जो इन दुखों से हमको मुक्त करा सकती
है। Again, he compares everything into this world, in this world, all the attachments and accumulations that one acquires in this life to be like a drop of water on a lotus leaf.
इस प्रकार से सारी जो उपलब्धियां हैं, सारी प्राप्तियां जो हैं, वो केवल उस दव की बूंद की तरह है जो कमल के दल पर अपने आप को।
The same example, like the two mice chewing the two branches, right? Time is taking everything away.
उसी प्रकार से जो दो चूहे का उदाहरण दिया है, जो अपनी तरफ से जीवन से सब कुछ छीन लेने का कार्य करते रहते हैं।
And imperceptibly, we do not see how time is ultimately taking everything away.
और हम ये समझ नहीं पाते कि हमसे अपने जीवन से समय कैसे छीना जा रहा है।
Just like yesterday, or last several days, I've been looking at one very nice book. It's called Prabhupada Saraswati Thakur.
कुछ दिन गए हफ्ते में महाराज जी बता रहे थे, वो स्वयं एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी के सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो है, उनके विषय में किताब पढ़ रहे हैं।
इट्स अ बुक अबाउट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती।
प्रभुपाद जी के गुरु के बारे में वो ग्रंथ है।
वन थिंग दैट फॉर मी दैट इज स्टक आउट इन माई माइंड By looking at this book, I was looking at so many photos that were taken back in the early 1900s.
मुझे जब उस किताब में बहुत सारे बहुत पुराने फोटोज जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज के फोटो हैं वो दिए गए हैं, उसको देखकर मैंने मन में ऐसा विचार आया।
There were so many photos in this book of Srila Bhakti Siddhanta surrounded by large groups of people on parikram in front of the Bhagbazar mat.
उसमें प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है उनके ऐसे चित्रपट है कि बहुत सारे लोगों के साथ में अलग अलग जगह पर महाराज जी विराजमान है, बाग बाजार में है या और एक रोचन में बैठे हैं, वो यात्रा में जा रहे हैं।
But I was looking and studying these photos and I'm thinking, where are they all? Huh? As I was looking and studying these photos, I started to think, where are they all?
So ye itne bheed ka jo photo hai unko dekh kar Maharaj soch rahe the ki ye sab ye log jo hain wo abhi kahan hain, aaj wo kahan hain?
So quickly they've all departed from this world.
Matlab bahut hi kam samay mein wo sare log jo photo mein dikhai de rahe hain wo aaj is jagah se nikal chuke hain.
Photos of hundreds, sometimes even thousands of followers.
सही पर वो हजारों लोगों के फोटो महाराज जी के साथ में निकाले गए उस किताब में हैं।
None of them are here.
और आज उनमें से एक भी व्यक्ति इस विश्व में जीवित नहीं।
Even the young children that were standing in front of the photos of Srila Bhakti Siddhanta.
इवन उसमें फोटो में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं उस फोटो के अंदर, वो बच्चे भी आज इस विश्व में जीवित नहीं।
Practically all of them are gone.
Everybody, सब लोग जो है मैं शरीर को छोड़कर चले गए।
Of course we understand that certainly Vaishnavas, their purpose in life is to achieve eternal shelter at the lotus feet of Shri Radha Govinda.
लेकिन वैष्णव भी हम जानते हैं कि वैष्णव के जीवन का उद्देश्य होता है कि श्री राधा गोविंद के चरणों की प्राप्ति करें जीवन में।
Although they have left this world, they have gone on to become associates of the eternal associates of the Lord.
उन्होंने इस विश्व को त्याग दिया होगा मृत्यु के रूप में, लेकिन फिर भी श्री राधा गोविंद के चरणों की प्राप्ति करने के लिए वो आगे बढ़े होंगे।
But yet, still, when I was looking at all these pictures, I was thinking that also there's so many pictures of Srila Prabhupada and his disciples, of our Srila Prabhupada.
फिर भी उन चित्रों को चित्रपटों को देखते हुए मुझे मन में विचार आ रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी के भी ऐसे बहुत चित्रपट हैं, बहुत फोटोज हैं जिसमें बहुत सारे सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं।
And already so many of them are leaving.
और उसमें से भी कई लोग अभी शरीर को छोड़कर जा चुके हैं।
What was the conversation between Yudhishthira Maharaj and Dhammar and
yes.
Dhammar, yes.
But
Yamaraj.
महाभारत में हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज एक कुएं के सामने एक जलाशय के सामने वो धर्मराज के साथ में यमराज के साथ बात करते
हैं
और वो धर्मराज युधिष्ठिर को पूछते हैं कि इस विश्व में सबसे आश्चर्य की बात क्या है.
अहं यहानि भूतानि गत वज अहं यहानि भूतानि Yes, that's right. Every single day, hundreds and millions of living entities are being sent to the kingdom of death.
Yamraj ko Yudhishthir Maharaj uttar dete hain ki har ek din hazaron log Yamraj ke rajya mein pravesh karne ke liye chale jaate hain.
Yet those who are remaining are looking after a permanent situation.
Aur jo log nahi gaye hue hain, jo jeevit hain, wo sochte hain ki yahan par hum kuch permanent anand ki vyavastha karenge.
What could be more amazing than this?
इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? ऐसे ऋषि महाराज उनको बताते हैं.
Describe is the most amazing thing.
ये बताते हैं कि ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है.
Every day, so many living entities and so many different forms of life are being sent to this kingdom of death.
क्योंकि हम देखते हैं कि हर रोज इतने प्रकार के जीव, इतने प्रकार के मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं.
But still, everyone who's remaining is thinking it won't happen to me.
फिर भी जितने लोग जीवित हैं वो सोचते हैं ये मेरे जीवन में नहीं होगा.
So they are working very hard, trying to maintain some temporary situation in this world.
वो ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं ये सोचकर कि मेरा जो यहाँ पर आश्रय है ये जो मेरा घर है इसको मैं अच्छी तरह दिखाऊं अच्छी तरह बनाकर रखूं.
And they lose sight of any other goal in life.
और दूसरे जीवन के अन्य किसी उद्देश्य को वो भूल जाते हैं.
And due to that mentality, due to that consciousness, they must be embarrassed by so many anxieties.
और ऐसी गलत धारणा की वजह से उनको ये निश्चित है कि उनको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा.
Just like it was Narada Muni who told King Pachini Bhagisha.
जैसे कि नारद मुनि राजा पचनी भरे को बताते हैं.
He says, "All you who are free from sinful activities."
वो नारद मुनि सही तो.
Yes.
राजा पचनी भरे को नारद ने बता रहा है कि आप तो पाप के प्रवृत्ति से और पापों से मुक्त हैं, शुद्ध हैं आप.
Nobody can counteract the effects of fruitive activities.
कोई भी जो कर्म फल है उनके बंधन को मुक्त नहीं हो सकता है.
By manufacturing another activity which is devoid of Krishna consciousness.
और कोई पुण्य कर्म करके कोई भी ये कर्म फलों को त्याग नहीं कर सकते.
Gives the example that such an effort to counteract the effects of suffering by manufacturing another act which will only create suffering.
ऐसे जो कोई लोग प्रयास करते हैं कि कोई पुण्य कर्म करके अपने पाप फलों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं इसके कारण केवल और कर्म उत्पन्न हो जाते हैं और फलों के अंदर हम फंस जाते हैं.
It's just like a person who has a bad dream.
ये उसी व्यक्ति की तरह है जिस व्यक्ति को एक बुरा स्वप्न आ रहा है.
He wakes up from his bad dream and hallucinates.
और वो स्वप्न से जग जाता है जबकि स्वप्न के विचारों में ही घंटे रहते हैं.
In other words, if you're having a bad dream, somebody is going to kill you.
अगर आपको सपना आता है कि आपको सपने में कोई मार रहा है.
And then you wake up from your dream, and then you and the room is there's total darkness around you.
और आप सपने से जब जाते हो देखते हो कि कमरे में बहुत बड़ा अंधेरा है.
And in that total darkness, you hallucinate that in the distance there's somebody who's about to kill you.
और वो अवस्था में सोच रहे कि हाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर मुझे मारने के लिए तैयार है.
He says that this is just like a person who tries to counteract the effects of his fruitive activities by manufacturing another activity which is devoid of Krishna consciousness.
ये उदाहरण उसी व्यक्ति की तरह है जो व्यक्ति अपने पाप फलों को त्याग करने के लिए किसी अन्य कर्म का आधार ले लेता है.
Like we're leaving a bad dream with a bad hallucination.
इसका मतलब है कि हम किसी बुरे स्वप्न को अपने जागृत अवस्था में भी आगे बढ़ा रहे हैं.
Actually, there is no relief.
लेकिन इसमें कोई संतुष्टि नहीं है.
And therefore he says if one wants to become free from the sufferings of this world. Narada says to Pachini,
बता रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में इस जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है.
There is no solution except to awaken to Krishna consciousness.
उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है केवल एक मार्ग है कृष्ण भावना को जागरूक करना.
This is our real state of wakefulness.
ये हमारी जागृत अवस्था का प्रतीक है लक्षण है.
If we're not awakened to Krishna consciousness, then we simply continue the illusion. If we're not awakened to Krishna consciousness,
अगर हम कृष्ण भावना की ओर जागरूक नहीं हुए हैं तो हमारा ये जो भ्रम है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं.
And it is just like a dream, bad dream.
और ये बहुत ही बुरे स्वप्न की तरह है.
In fact, when Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni to give him instructions,
जब नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि हमें आप उपदेश कीजिए,
he said that you are brahmacharya, you are detached, renounced, I am griha buddhati.
युधिष्ठिर महाराज नारद जी को बताते हैं कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो विरक्त हैं, मैं तो गृहस्थ आश्रम में फंसा हुआ एक मूढ़ व्यक्ति हूं.
I am a householder who has forgotten the goal of life.
मैं परिवार वाला व्यक्ति हूं जो मेरे जीवन के उद्देश्य को भूल चुका.
Please give me some instruction.
मुझे कुछ आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए.
So so Narada Muni instructed Yudhishthira.
तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया है.
He told them, he says that it is the duty of a householder.
तो वो कहते हैं कि ये गृहस्थ जो गृहस्थी है
to accept,
तो कर्तव्य है.
Accept some honest means of livelihood.
उसे प्रामाणिक तरीके से अपने जीवन को धन कमाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए.
And to offer the fruits of his labor for the service of the Supreme Lord.
और अपने कार्य का जो फल है, तनखा वगैरह को मिलती है, वो भगवान को ही अर्पण करनी चाहिए.
How to offer the fruits of one's labor for the service of the Lord must be understood by association with saintly personality.
और किस तरह से अपने कार्य के फल को भगवान को अर्पण करना है, ये हमें केवल वैष्णवों के संग में ही हम सीख सकते हैं.
And he said that the householder who must daily associate by hearing the pastimes of the Supreme Lord in the association of devotees.
और भक्तों के संग में नित्य रूप में भगवान के बारे में श्रवण करके ही हम ये कला सीख सकते हैं.
And gradually he will become detached from his material, his household situation, just as a person gradually awakens from a dream.
और इस तरह से ही धीरे धीरे अपने गृहस्थी जीवन की आसक्तियों को मुक्त हो सकता है उसमें से, जैसे सोया हुआ आदमी धीरे धीरे जग जाता है.
Gives the same example about a dream.
और वो उसी बुरे स्वप्न का आयोजित वर्णन करते हैं.
That a person in this material world, he's in a dreamlike, who's attached to everything around him, is in a dreamlike state.
तो बताते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं से आसक्त हो गया है, वो उसी व्यक्ति से व्यक्ति कर रहा है जो एक स्वप्न देख रहा है.
He dreams of happiness he'd like to achieve.
वो अपने स्वप्न में आनंद का अपेक्षा करता है.
And just like in the Bhagavatam, also an example is given again of a dream.
और भागवतम में भी ऐसे ही स्वप्न का एक वर्णन किया है.
In the 11th canto of the Bhagavatam, the example is given.
11वें श्लोक में भागवतम में इसका वर्णन आता है.
That the dualities of this material world do not ultimately exist.
ये जीवन का जो द्वंद्व है, duality है, वो हमेशा उपस्थित रहती है.
But the conditioned soul experiences them to be real due to this conditioned intelligence.
लेकिन ये अपनी जो बद्ध बुद्धि है, ये जो दूषित बुद्धि है, उसके द्वारा हम समझते हैं कि ये सब सच है.
He says this imaginary experience of a world that is separate from Krishna.
ये जो काल्पनिक उसकी कल्पना है, काल्पनिक विश्व में रहता है वो, जो भगवान से अलग है.
Can be compared to the acts of dreaming and desiring.
ऐसे कल्पना विश्व में रहना, इसका मतलब है कि वो सोच रहा है कि वो अपने ये स्वप्न में रहने जैसा है जिससे हम सुख की अपेक्षा करते हैं.
When the conditioned soul dreams of something wonderful or something terrible,
जब ये बद्ध जीव अपने सपने में कोई अद्भुत आनंद प्राप्त करता है या दुखभर आनंद प्राप्त करता है,
or if he daydreams of something that he would like to have or avoid,
और दिन में बैठे बैठे जब वो मन में सपने देखता है जो सुख मिलेगा वो प्राप्त होगा,
he creates a reality that has no existence beyond his own imagination.
और वो ऐसे अपने लिए स्थिति उत्पन्न करता है जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो कल्पना में आनंद लेने का प्रयास करते रहते हैं.
He speaks about night dreams and day dreams.
वो रात के सपने के बारे में बात करता है और दिन के सपने के बारे में.
The night dream, we dream of something very wonderful.
रात के सपने में वो बहुत अद्भुत आनंद की अनुभव करता है.
It's not real. It's a night dream.
लेकिन वो सच नहीं है, वो रात का ही सपना है.
In our dream at night, sometimes we may dream that we've obtained so much wealth, so that we've become a king or a queen.
और रात को कभी हमको सपना आता है कि हम राजा बने हैं या रानी बने हैं या बहुत सारा धन हमको मिल चुका है.
We're being served by hundreds of servants.
हजारों सैकड़ों सेवक हमारी सेवा कर रहे हैं.
And then we wake up from this wonderful dream.
और जब हम जग जाते हैं सपने से तो.
And then we experience distress because it was only a dream. Or we may dream something very horrible. We may be dreaming that we fall into a large well full of poisonous snakes.
Or
And there's a tiger at the top of the well about to devour us. And we wake up from the dream. Wonderful, it was only a dream. But both the happiness and distress that we experience is related to only the dream.
लेकिन इन दोनों सपनों के जो दोनों अनुभव हैं, खुशी के और दुख के, दोनों ही स्वप्न ही है.
It has no connection to reality.
इन दोनों का सत्य से कोई रिश्ता नहीं है.
So much happiness, relief from that terrible dream, it's so much distress that we experience.
एक सपने में बहुत सारा आनंद का अनुभव किया है, एक सपने में बहुत सारा दुख का अनुभव किया है, बाद में जगने के बाद में दुख को
But what is the meaning of this happiness and distress when it's connected to something that's not real?
लेकिन जो सत्य के ऊपर आधारित नहीं, जो सत्य नहीं है, ऐसे अलग अलग आनंद और दुख के अनुभव का क्या अर्थ है?
That is the night dream.
ये रात का सपना है.
And then there's the day dream.
इसके बाद दिन का सपना आता है.
Something that we would like to have or something that we would like to avoid.
दिन के सपने में हम क्या सोचते हैं, हमको क्या मिलना चाहिए और हमको किस चीज को छोड़ देना चाहिए.
It's the same thing.
लेकिन वो एक ही वस्तु है.
We're dreaming that if I have this, I'll get pleasure.
सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी.
And if I avoid this, I won't have to suffer.
अगर मैं इस चीज को छोड़ दूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा.
To Siaga he told by a take the kofi do is explained in the Bhagavatam. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined, they do not endeavor for happiness.
शास्त्र में कहा गया कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ऐसे वस्तुओं के पीछे अपने सुख को नहीं खोजते.
Which can be obtained by wandering to the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala.
जिन सुखों को ब्रह्मलोक से लेकर पाताललोक के सभी जीव प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे सुखों के पीछे बुद्धिमान जीव नहीं भागता है.
Because they know that as far as happiness derived from sense enjoyment is concerned,
क्योंकि वो जानते हैं कि जो इंद्रियों से उत्पन्न आनंद है,
it can be obtained automatically in due course of time.
तो आसानी से किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है.
Just as in due course of time, one obtains miseries without asking for it.
जैसे जीवन में बिना पूछे हमें दुख मिल जाते हैं, वैसे ही इंद्रिय भोग की व्यवस्था भी हो जाती है.
Nobody endeavors for suffering.
कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करता.
Nobody wakes up in the morning and makes plans for suffering that day.
कोई भी व्यक्ति जीवन सुबह उठकर ये सोचता नहीं कि आज मैं कैसे दुखी हो जाऊं.
Nobody thinks like that.
कोई भी सुबह उठकर सोचता नहीं कि मैं आज.
First thing we wake up in the morning, we make so many plans on a piece of paper. I can suffer by doing this, I can suffer by doing
this. ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है सुबह उठकर पहले ही प्लान बना था कि ये करने से मुझे दुख मिलेगा, मुझे ये दुख मिलने की संभावना है, मैं इसको करूंगा दुख मिलेगा, दुख मिलना चाहिए.
It comes of its own accord.
दुख अपने ही तरफ से अपने ही आप हमारे जीवन में आ जाते हैं.
Persons who are actually intelligent, they similarly should not make plans for temporary happiness.
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्षणिक आनंद के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए.
Because they know that similarly, just as suffering comes, happiness will come.
क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं अपने आप ही, बिना मांगे बिना पूछे, वैसे सुख भी आते रहेगा.
And therefore they endeavor for neither.
इसलिए वो सुख और दुख दोनों के लिए प्रयास नहीं करते.
These are intelligent persons.
इन व्यक्तियों को बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया.
So in the material world, everyone is daydreaming.
इन भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति दिन में बैठकर सपन देखा है.
बिकॉज ड्यूरिंग योर डे ड्रीम देयर मेकिंग सो मेनी प्लान्स दैट यस इफ आई गेट दैट ओके आई विल बी हैप्पी.
तो दिन में बैठकर वो सपन देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मुझे वो वस्तु मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा.
बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट टू मेंटेनेंस ऑफ दैट प्लेजर विल प्रोड्यूस सो मच सफरिंग.
लेकिन वो जानते नहीं कि उन वस्तुओं को बनाए रखने के लिए कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा.
They think that which is a source of pleasure is actually a source of misery.
जिस वस्तु को अपने सुख का कारण समझते हैं वही उनको न जानते हुए भी वो उनके दुख का ही कारण होता है.
This is one of the symptoms of avidya or ignorance.
अविद्या की व्याख्या यही है.
To think that which is a source of misery is actually a source of pleasure.
अविद्या की व्याख्या क्या है? दुख के कारणों को सुख का कारण समझना, यही अविद्या का मूल.
To think that which is temporary to be permanent.
जो क्षणिक वस्तु है उसको शाश्वत समझना, यह अविद्या है.
To think that which is not the self to be the self.
जो व्यक्ति जो हम स्वयं नहीं है, हमारी पहचान वो नहीं है, गलत पहचान है, उसको सही पहचान समझना अपने बारे में.
This is ignorance.
इसे अविद्या कहते हैं.
And it's described that this ignorance is the root cause of suffering.
और इसी विद्या को हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण बताया गया है.
Due to the ignorance, the living entity makes so many plans in the material world.
अज्ञान के कारण इस जीवन में सुखवत सुखी होने के लिए जीव बहुत बहुत योजना बना लेता है.
But it has no connection with reality.
लेकिन सत्य के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है.
It's simply continuation of the night dream into the day.
केवल रात के सपने को हम दिन के सपने में बदल देते हैं.
And therefore, that is why Vishwanath Chakravarti Thakur has given this analogy that we gave in the beginning.
इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये जो दृष्टांत दिया है इसी कारण दिया.
The time is passing.
समय गुजर रहा है.
And it's taking away ultimately everything.
और धीरे धीरे हमारे से सब चीज छीनी जा रही है समय के रूप में.
And therefore, the intelligent person should seek permanent relief from the dualities of the material world.
ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जरूरी है कि इस जीवन के द्वंद से मुक्त होने का प्रयास करें.
Were like which arise due to dreaming at night and dreaming in day.
ऐसे जो स्थितियां हैं वो रात को और दिन में स्वप्न देखने के कारण दुखों की स्थिति उत्पन्न होती है.
Instead of endeavoring for the temporary pleasures and relief from suffering.
और इन क्षणिक सुखों के पीछे भागने के बजाय
he must understand that real householder life.
समझना जरूरी है कि सही गृहस्थ जीवन क्या है.
That he does not try to enjoy.
इस गृहस्थ जीवन में उसे सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए.
He must understand that the responsibilities and duties that are there within householder life.
केवल अपने कर्तव्यों को जो कर्तव्य गृहस्थ जीवन में उसके लिए बताए गए हैं उन कर्तव्यों को निभाना समझना उसके लिए जरूरी है.
The man to help him to advance his Krishna consciousness.
जो कर्तव्य उन्हें कृष्ण भावना में आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं उन कर्तव्यों को समझना उस व्यक्ति के लिए जरूरी है.
And help him to advance the Krishna consciousness of his family members.
और अपने परिवार के लोगों को भी कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए उनको आगे बढ़ाने.
There are many duties which must be performed in household life.
गृहस्थ जीवन में अनेक कर्तव्य बताए हैं जो जीव को निभाना जरूरी है.
And if a person performs these duties,
अगर वो एक व्यक्ति उस कर्तव्यों को निभाता है
as a matter of duty,
एक कर्तव्य के रूप में अगर करता है
not as an attempt, a foolish attempt for future enjoyment,
वो इस भावना से नहीं कि इस कर्तव्य को निभाने से मुझे आगे जाकर सुख मिलेगा.
He understands that real enjoyment comes from something higher.
वो जानता है कि सच्चा आनंद जो है वो किसी उच्च वस्तु से प्राप्त होता है.
Real enjoyment, real pleasure comes from hearing the glories of the Lord with the association.
जीवन का सही आनंद है वो भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करने से ही प्राप्त हो सकता है.
One who is awake in his attraction for hearing the messages of the Supreme Personality of Godhead.
परम भगवान के संदेशों को सुनने के लिए जिस व्यक्ति ने इच्छा उत्पन्न की है इच्छा जागरूक की है.
And is awake in his attraction for chanting the holy names of the Lord.
जिसे भगवान के पवित्र नाम के जप करने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया है.
He knows that this is pleasure.
वही जानता है कि यही सच्चा सुख.
This is satisfaction to the self.
यही सच्चा समाधान संतुष्टि है.
Anything else in this world is simply pale, dry in comparison to such pleasure.
इसके अलावा बाकी सब वस्तु निस्तेज दुख भरी है.
He simply performs his duty as a matter of duty in relationship to family.
ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों को केवल कर्तव्य की भावना से करता है.
And without attachment.
और किसी भी वस्तु से आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्य करता है.
He does not depend upon these things for his pleasure.
इन वस्तुओं के ऊपर वो आनंद की अपेक्षा नहीं करता है.
Because he knows that pleasure comes from something else.
क्योंकि वो जानता है कि आनंद जो है इन वस्तुओं के बजाय किसी और उच्च वस्तु से आने वाला है.
And because the pleasure he experiences from that activity in Krishna consciousness is there.
कृष्ण भावना के आधार पर जो कार्य है उसमें जो वो आनंद प्राप्त करता है.
He can perform his duty.
उस आनंद के आधार पर उस संतुष्टि के आधार पर अपने कर्तव्य को कर्तव्य भावना से वो आसान से कर सकता है.
बिकॉज द एक्टिविटी डन.
क्योंकि कर्तव्य को तो करना ही पड़ेगा.
जिस लाइक कौवल देव श्रीधर ही वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी.
जिस तरह से कौवल देव श्रीधर अपने जीवन में अपने कर्तव्य को निभा रहे थे.
ही वाज हाउसहोल्डर आल्सो. ही वाज हाउसहोल्डर आल्सो.
वो भी अपने जीवन में
गृहस्थ. ही हैड हाउस.
उसके लिए उसका भी घर था.
कोर्स देयर वर होल्स इन द रूफ.
उसके छत में छपरे छत पे बहुत सारे होल थे.
And every time it would rain, the water would come in. And also he would be ridiculed by young Nimai for wearing a dhoti which was filled with holes. But he was performing his duties.
लेकिन वो अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे से निभा रहे थे.
एवरी डे ही वाज सेलिंग बनाना लीफ कप्स एंड बनाना लीफ प्लेट्स.
हर दिन वो जो केले के पत्ते के बनाए हुए जो पत्तल हैं उसको बेचते थे.
व्हिच वाज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस इन बंगाल.
कोई बड़ा बिजनेस है ना उनका, बहुत अच्छा बंगाल में सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता था.
लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन.
उसमें बहुत सारी प्रतिस्पर्धी लोग रहा करते थे उसके.
स्टिल एवरी डे ही वुड परफॉर्म हिज ड्यूटी. ही वुड गो आउट टू सेल बनाना लीफ कप्स एंड प्लेट्स.
हर रोज कॉलेज से जाकर कर्तव्य भावना से वो दुकान लगाता था.
यंग नीमाई वुड कम एंड ही वुड ट्राई टू स्टील सम ऑफ हिज वेयर्स.
और नीमाई पंडित बड़े रोज नियम से उसके पास जाया करते थे खरीदने के लिए.
एंड कोलोनेटर शेठार ही वुड से नीमाई व्हाई आर यू डूइंग दिस.
और वो रोज नीमाई उसको तंग करते थे. वो तो पूछते थे कैसे आप क्यों करते हो, रोज आपको तंग करते हो.
इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद माई प्राइसेज गो चेक एनीवेयर एल्स यू सी दैट माई प्राइसेज आर फेयर. आई मस्ट यू.
अगर आपको लगता है कि मेरे पत्तल का दाम ज्यादा है तो आप कहीं से जाकर तपास कर लीजिए क्या बाकी लोगों को लोग अपना क्या रेट दे रहे हैं.
Kolaveshwar Shridhar was every day he would perform his simple duty and he would get 50% of the results of his activities for worship of Ganga.
Sadhaki mein kaarya karne ke baad jo bhi dhan kamate the usko uska aadha dhan wo Ganga Devi ki puja karne mein vyatit karte
the. Even Nimai would try to provoke him and say, why are you worshipping Ganga? Don't you know that I am the source of Ganga?
Aur Nimai Pandit ji ko bata rahe the ki aap Ganga ki puja karne mein itna dhan kyun kharch karte ho, Ganga ka udgam main hu.
Kolaveshwar Shridhar would hold his ears and say, oh Vishnu, Vishnu, how can you offend like this?
ये सुनकर कलवेश शुद्धा ने कानों को पकड़कर बोलते थे कैसे क्यों आप अपराध कर रहे हो, क्यों ऐसे बोल रहे हो.
But still every day he was performing his simple household duties.
फिर भी ऐसा होते हुए भी रोज नियम से अपना कर्तव्य निभाते थे.
Satisfied.
वो संतुष्ट था उसका.
Why was he so satisfied?
क्यों वो इतना संतुष्ट थे.
Why was he not thinking, well, maybe I should get an employer who could feed, who can pay me more than this simple
business.
Maybe I should start another business. He was satisfied. Why was he so satisfied? Because all night long he was chanting the names of Hari. He did not depend upon his pleasure by the selling of his banana
products. उनका ये विचार नहीं था कि वही उनके सुख का कारण है.
He was getting his pleasure from someplace else.
उनको जो सुख मिलता था वो रात के अपने जप के माध्यम से प्राप्त होता था.
Therefore he was able to execute his duties as a matter of duty.
इसलिए वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभा पा रहे.
This is householder life.
ये सही गृहस्थी जीवन है.
The house of he performed them simply as a matter of duty because they ought to be done.
वो अपने कर्तव्य
he performs his duties as a matter of duty.
वो अपने कर्तव्यों को कर्तव्य भावना से निभाती है.
But he understands that the real pleasure in life is obtained in the association of the devotees of the Lord.
वो जानते हैं कि भगवान के भक्तों के संग में सही कृष्ण भावना के आधार पर ही हमें संतुष्टि मिल सकती है.
By hearing these pastimes of the Lord and his devotees, it awakens an attraction within one's heart.
ऐसे भगवान के भक्तों के वर्णनों को सुनते ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है.
That there is a reality beyond this dreamlike state of life.
हमारे स्वप्नवत अवस्था के परे जाकर भी कोई सत्य अवस्था है जो सही है शाश्वत.
That reality is the reciprocal exchanges of the Lord with his eternal associates.
वो सत्य की अवस्था क्या है, वो सत्य क्या है, वो हमारा और भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसके संबंध जो है वही वो सच्चाई है.
That reality is the family of the Lord.
और वो सच्चाई क्या है, वो भगवान का परिवार है.
Who is surrounded by this Krishna Parishad, his eternal associates in the transcendental realm of
उस परिवार का वृंदावन में भगवान के साथ भगवान के भक्त हैं, उनके परिवार के जन हैं, उनके साथ वो निभा रहे हैं.
Everything here is simply a reflection of that.
और यहाँ पर जो भी हम देखते हैं वो केवल उसका प्रतिबिंब है, झूठा प्रतिबिंब.
It is simply a perverted reflection.
ये विकृत प्रतिबिंब है उस सच्चाई का.
Wherever there is a flat reflection, it means that somewhere there must be an object which gives off light.
जहाँ पर भी हम कोई प्रतिबिंब देखते हैं, इसका मतलब कोई भी सच्ची वस्तु कहीं और है जिसका प्रतिबिंब वहाँ पर गिर रहा है.
Krishna says in the Bhagavad Gita that when all of this world is destroyed, that place, my abode, eternally remains the same.
भगवान कहते हैं कि अगर सारे विश्व के जो लोग हैं वो नष्ट हो जाए, फिर भी वो मेरा जो विश्व है
It describes that in that spiritual abode, there is no need for electricity or artificial light. Everything is self-luminous.
कहते हैं कि मेरे विश्व में कोई बिजली की जरूरत नहीं है, कोई हर एक वस्तु अपने आप में स्वयं प्रकाशित है.
That reflection is simply a reflection of the actual substance which is existing in the spiritual world.
जो प्रतिबिंब हम देखते हैं वो उस वस्तु का प्रतिबिंब है जो सत्य है जो आध्यात्मिक जीवन में उपस्थित है, जिसके कारण ये प्रतिबिंब यहाँ पर.
In the material world, everyone is simply chasing after reflections.
और भौतिक दुनिया में केवल प्रतिबिंबों के पीछे में ही, प्रतिमा छाया के पीछे पीछे ही लोग भाग रहे हैं.
Just like I remember one time I was staying at the home of one householder.
मुझे याद आ रहा है कि मैं एक समय एक गृहस्थ के घर में कुछ समय के लिए निवास कर रहा था.
And for his children he was keeping one dog.
What?
For his children he was keeping outside one dog.
Dog. तो अपने बच्चों के लिए एक व्यक्ति ने एक कुत्ता रखा था.
And the dog would be outside in the driveway all day long. Protecting the home.
और दिन भर वो कुत्ता घर के बाहर जो थोड़ा रास्ता था उसके आगे पीछे उसकी रक्षा किया करता था.
But at a certain time of day, there was a reflection of light that would come off some object of the house onto the wall next to the house.
और एक समय दिन में किसी घर की जो वस्तु है उसकी छाया उस दीवार पर पड़ती थी जहां पर वो कुत्ता घूमता था.
And the reflection would move.
और वो जो छाया है वस्तु की वो ऐसे.
And the dog would lunge at the wall with his mouth.
और वो देखते हुए छाया के ऊपर जो वस्तु गिर रही है उसकी छाया गिर रही है उसकी छाया के पीछे वो कुत्ता जोर जोर से भौंककर उसको पकड़ने का प्रयास करता.
Smashing his snout up against the brick wall.
अपने चेहरे को उस पर दीवार को टकरा कर भी वो उस वस्तु को पकड़ने का प्रयास.
So determined to catch that reflection.
इतना निश्चय के साथ ही उसको उस वस्तु को पकड़ना है.
He thought it was substance.
उसको लगा कि ये सत्य वस्तु है.
He thought he could attack it and defeat it.
उसको लगा कि मैं उसको पकड़ सकता हूँ, उसको परास्त कर सकता हूँ.
But he was run and simply nothing would come.
और वो जाकर दीवार में टकरा था लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता.
And he would do this for as long as the sunlight was in that particular
place. जब तक सूरज का किरण के कारण वो छाया वहां पर गिरती थी उतना समय तक वो कार्य अपना वो करता था.
I would watch him out the window, see him lunging at the brick wall.
और मैं खिड़की से देखा था ना महाराज बता रहे हैं कि दिन भर वो जब तक सूरज था तब तक वो उस प्रतिबिंब के पीछे छाया के पीछे में
never catching.
लेकिन कभी भी उसको वो पकड़ नहीं सकता.
The next day, the same thing.
दिन वो नहीं पकड़ा सका फिर दूसरे दिन वही प्रयास कर रहा है.
And I was thinking as I was looking, this is what it's like to pursue pleasure in the material world.
वो सोच रहे थे महाराज जी यही जीवन में आनंद खोजने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की.
Everybody is lunging after these temporary pleasures.
सब लोग इस क्षणिक सुखों के बीच में ऐसे टकरा रहे हैं पकड़ने के लिए.
Smashing their snouts.
आप लोग चेहरे पर गिर रहे हैं, मुंह पे गिर रहे हैं कभी.
So much pain, so much suffering.
इस टकराने से उनको बहुत दर्द होता है फिर भी.
But still thinking, I will get it.
ये सोचते हैं कि नहीं मैं प्रयास करूंगा मुझे मिलना चाहिए.
Instead, we should be like Mukunda, who was told that he would get the association of the Lord after 10 million births, and he was saying, I will get.
लेकिन हमें उस मुकुंद की तरह बनने इसको बताया गया था कि लाखों जन्म के बाद आपको मेरा दर्शन होगा और वो चिल्ला रहे थे कि मुझे मिलेगा उससे मुकुंद की तरह आपको होना चाहिए.
Not looking after the false temporary pleasures of this world, but being prepared to wait 10 million births to get the darshan of the Lord.
न केवल हमें वो झूठे भ्रमित आनंद के पीछे भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, लेकिन हमको जो आगे जाकर मिलने वाला आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद है, उसके लिए तड़पना चाहिए.
And to feel ecstatic because that faith that the Lord will give his darshan.
और हमें आगे जाकर भविष्य में भगवान दर्शन देंगे इस विश्वास के साथ में हमको आनंद की अपेक्षा करनी चाहिए.
That's how we must live in this world.
इसी प्रकार से हमको इस जीवन वो अपने जीवन में जी रहे थे.
So although we may hear such descriptions by Rishabdev to his sons about this dark well.
तब तक हम ये ऋषभदेव द्वारा भागवत में इस उद्देश्य को सुन रहे हैं कि सारी तरफ दुख है और अंधेरा है.
Then instead of creating a dark well in household life.
और इसलिए अपने जीवन में एक अंधे कुएं की तरह स्थिति को उत्पन्न करने के बजाय
if we utilize the human form of life properly,
अगर अपने मनुष्य जीवन को हम सही रूप में इस्तेमाल करते हैं,
for increasing our attachment to the association of Vaishnavas,
भगवान के भक्तों के संघ के लिए अगर हम आकर्षित हो जाते हैं,
for chanting the holy name of the Lord,
भगवान के नाम का जप करने के लिए,
for receiving Vaishnavas in one's home,
वैष्णवों को अपने घर में आमंत्रण करना चाहिए,
for performing all the duties required of householders.
सारे गृहस्थों के कर्तव्यों को निभाना चाहिए.
We were just reading yesterday.
हम कल ही पढ़ रहे थे.
Madhavananda, he was there. We were reading Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who was giving instructions in one letter.
Salam Shampo, Madhavananda Prabhu ke saath baithkar, Prabhupada ji ke guru ke vishay mein unke upadeshon ke bare mein pad rahe
hain. No, actually, I have it right here. We'll end on this quote. He said that the tendencies of the illusion householders can only be destroyed by associating with devotees of the Lord.
जो ग्रस्तों की भ्रमित आनंदों के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति होती है वो केवल भगवान के भक्तों के संग से नष्ट हो सकती है.
Those who enter into household life,
जो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं,
following the rules of the external world,
भौतिक दुनिया के नियमों का पालन करते हुए,
will be more and more absorbed in the illusion's condition.
ऐसे व्यक्ति जीवन के भ्रम में और अधिक गहराई में होते जाएंगे.
Just as the devotees of the Lord need to enter into the sannyas ashram,
जैसे भक्तों के जीवन में क्रमशः उनको सन्यास प्राप्त होता है,
in the same way they need to enter into the grihastha ashram,
उसी भावना से उनको सन्यास की भावना से उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए.
The festival known as griha pravesh,
जो गृह प्रवेश नाम की विधि हम अपनाते हैं,
entering a house for the first time,
सबसे पहली बार हम घर में जब घर प्रवेश करते हैं गृह प्रवेश करते हैं,
should be celebrated only by a devotee householder.
ऐसा विधि जो है, ऐसा जो समारोह है, वो केवल भक्तों के ही घर में होना चाहिए.
Not a non-devotee householder.
अभक्तों के घर में विधि नहीं होना चाहिए. क्यों?
When a devotee enters his house,
जब ये भक्त अपने घर में प्रवेश करता है,
we should know that he has actually entered his mat.
हमको जानना चाहिए कि उसने अपने मठ में प्रवेश किया.
For a devotee, there is no difference between entering his house and entering a mat.
क्योंकि भक्तों के लिए अपने घर में प्रवेश करना और मठ में प्रवेश करना कोई अंतर नहीं है.
But there is a heaven and hell difference between a devotee's entering his house and a non-devotee's entering his house.
लेकिन भक्तों का अपने घर में प्रवेश करना और अभक्तों का अपने घर में प्रवेश करना, इसमें स्वर्ग नरक कितना अंतर है?
Anyways, a little bit more. I'll just read.
You can go on, no problem.
One should enter one's house only to always engage oneself in the service and thoughts of Krishna.
अपने घर में प्रवेश करते समय हमारे घर में हमारे घर में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है.
And to have everything favorable for that.
और भगवान की सेवा करने के लिए सारे वस्तुओं को कैसे अनुकूल किया जाए, यही विचार होना चाहिए.
The householder should always stay away from bad association and gossip.
बुरे संघ से और प्रजात्व की भावना से हमेशा ग्रस्तों को दूर रहना चाहिए.
He should nurture with great care.
और
He should nurture with great care such qualities as enthusiasm, determination, and patience.
उत्साह और धीर्य और धीर्य और निश्चय, ऐसे दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी चाहिए.
And such devotional practices as hearing and chanting.
और श्रवण और कीर्तन आदि भक्तिपूर्ण विधियों को उसको अपनाना चाहिए.
To serve Hari, Guru, and Vaishnava.
हरि गुरु और वैष्णव की सेवा में उसको प्रयास करना चाहिए.
To chant Hari Naam.
भगवान के नाम का जप करना चाहिए.
To associate with the sadhus.
और साधुओं के साथ संग करना चाहिए.
And to hear about the Lord are the essential duties of the household.
और ऐसे संग में भगवान के बारे में श्रवण करना, यही गृहस्थ लोगों का कर्तव्य है.
If all their endeavors are directed toward the service of the Lord.
सारे उनके प्रयास भगवान की सेवा की ओर निर्देशित हैं.
Then they will definitely benefit.
फिर वो व्यक्ति को निश्चित ही लाभ प्राप्त होने वाला है.
They will be protected.
और उसकी रक्षा में होगी और सुरक्षित रहेगा.
And their lives will be fulfilled.
और उनके जीवन परिपूर्ण हो जाएगी.
थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. यस.
यू आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी काइंड्स ऑफ ड्रीम्स, वैराइटीज ऑफ ड्रीम्स. बट समटाइम्स ऑल्सो देयर ड्रीम्स दैट वी आर going with Gurudev for yatra and holy places. So how do you see those dreams?
Those dreams are reality because they're connected to Krishna.
Maharaj keh rahe hain, maine prashn pucha ki humko Guruji mein aise sapne bhi aane hain jab Guruji ke saath mein yatra kar rahe hain aur yatra mein ja rahe hain. Maharaj ne bataya ki wo acche sapne hain. सकते हैं.
We should have try to have dreams like Sachimata. She had dream also. She had dream about the Krishna and Balaram deities in her house.
ऐसी माता जो जगन मापों के माता है उसके जैसे सपने आपको आने चाहिए. उनको सपने कैसे आते थे कि उनके घर में कृष्ण बलराम विराजमान थे.
She had a dream that Nityananda and Lord Chaitanya came and they began a quarrel with Krishna and Balaram.
उनको एक स्वप्न आया कि निशानंद प्रभु जगन मापो उनका कृष्ण और बलराम के साथ में झगड़ा हुआ.
And they would begin quarreling. Why are you accepting these milk sweets?
पर वो बोल रहे हैं कृष्ण बलराम से झगड़ा कर रहे हैं कि आप हमारे घर में रहकर के जो भोग लगा रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे.
Don't you know that now we have appeared as Brahmins and now that is as cowherd boys and now these milk sweets are meant for us.
क्या आप जानते नहीं है कि अभी हम दोनों ब्राह्मण के रूप में अवतार ले चुके हैं और ये सब भोग तो हमारे लिए आपसे उसको लेते हैं.
She was having a dream. She was seeing this quarrel going on between Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Krishna and Balaram in her temple room.
ये जो दिव्य झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, उसको अपने सपने में देख रही है कृष्ण बलराम के साथ में.
And she asked her son Nimai, "Can you please explain this dream to me?" So of course, her dream was reality. So if we dream to be in the association of the Lord and the Lord's devotees, then this is reality. We should always dream for this. Because if we always dream for this, this is called sadhana. This is our bhajan. And the Lord will certainly make it a reality. Because the Lord will always fulfill the desires of His devotees who are always hankering for service to Him.
ऐसे भक्तों की इच्छा भगवान जरूर ही पूरा करते.
दिस इज व्हाट आवर भजन शुड बी लाइक एवरी डे.
ऐसे हमारा नित्य का भजन होना चाहिए.
वी शुड बी ड्रीमिंग टू बी फुली एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड.
हमको ये स्वप्न देखना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की सेवा में रहेंगे.
वी शुड बी ड्रीमिंग टू बी ऑलवेज इन द एसोसिएशन ऑफ वैष्णव्स.
हमेशा हमको स्वप्न देखना चाहिए कि हम हमेशा भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे.
वी शुड बी प्रेइंग एंड क्राइंग टू हैव द एसोसिएशन ऑफ इवन द वैष्णव्स हु डिपार्टेड एंड फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम देम.
जो भक्त यहाँ पर संत लोग इस दुनिया में छोड़ के जा चुके हैं उनके संग के लिए हमको रोना चाहिए, उनके संग की अपेक्षा करना चाहिए.
The Lord will certainly make it a reality.
और वो जो हमारा स्वप्न है, हमारी प्रार्थना है, उसको भगवान सत्य में निश्चित ही बदल देंगे.
ओके
डिजायर एंड प्रे फॉर कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ योर्स. हम सब लोग महाराज के संग की नित्य संग की अपेक्षा करते
हैं. I'm leaving today.
महाराज कहते हैं मैं जा रहा हूं. मैंने कहा इसलिए आपको उत्तर
करूं.
सो यू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू बोलिए ना लेकिन आपको नॉट बाय वन सिक बचती.
दैट इज कृष्णा सैंड्स. As I said yesterday to Madhavananda, we are always hankering to become sick so that we can come in the hospital. So we can have your association.
Alright.
Maharaji,
we are very, very thankful and grateful to you for your wonderful association and mercy and kindness. आप सबकी ओर से महाराज का धन्यवाद अदा कर रहा हूँ. आपके संघ के लिए, आपके सेवा के लिए और आपके अस्तित्व के लिए यहाँ पर आप उपस्थित रहे उसके लिए हम सब लोग महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी संदेशा नहीं दिए.
I don't. What did you say? Then you should tell me.
On behalf of everybody, I thank you for your association, for your service that you have provided us, for your presence and for your association. I am very grateful. स्वामी महाराज